हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 28, 29, 30 एंड 31। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्बरधारुण बिम्बफलधरोष्ठा, पुलेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे, वेदे साङ्गपक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक नंबर 28 एंड 29। कृपा करके मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, दितव्रते नहि मैया छंदांसी कुरवोग्नय मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थं च प्रदर्शितम् दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरभ्युत धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोग्नय मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थं च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरभ्युत धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थं च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरभ्युत धृतवृतेन हि मया छन्दांसि गुरवोग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थं च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरभ्युत धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थं च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरभ्युत। शब्दों का अर्थ, धृतव्रतेन ही मया, धृतव्रतेन अर्थात कठिन व्रत करते हुए ही, अर्थात निश्चित ही, मया मतलब मेरे द्वारा, छन्दांसि गुरवोग्नय, छन्दांसि अर्थात वैदिक मंत्र, गुरव गुरुजन, अग्नय यज्ञ की अग्नि, मानिता निर्व्यलीकेन, मानिता अर्थात भली भांति पूजित, निर्व्यलीकेन किसी छद्म से रहित, गृहीतम चानुशासनम, गृहीतम अर्थात तथा स्वीकृत, अनुशासनम अर्थात पारंपरिक अनुशासन, भारत व्यपदेशेन, भारत अर्थात महाभारत के उपदेशेन अर्थात संकलन किया ही, यानी निश्चय ही, या मानार्थंच, आमनार्थंच का मतलब होता है शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति, च यानी तथा, प्रदर्शित यानी ठीक प्रकार से कहा, दृश्यते अर्थात जो आवश्यक है उससे, यत्र धर्मादि, यत्र मतलब जहां, धर्म मतलब धर्म, आदि मतलब उसका जो धर्म और दूसरा जो ऐसा धर्म अर्थ उसका मार्ग, स्त्री शूद्र आदि भी अप्युत, स्त्री शुद्र यानी यहाँ तक कि स्त्रियों शूद्रों आदि के द्वारा उत कहा गया। इसका मतलब अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की सद्मा रहित पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग को देख सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कठोर व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करें। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को कर्मबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की उपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। श्लोक नंबर 30। तथापि भतमे दैह्यो यात्मा सैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा। तथापि भतमे दैह्यो यात्मा सैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा। तथापि भतमे दैह्यो यात्मा सैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा। तथापि भतमे दैह्यो यात्मा सैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा। तथापि भतमे दैह्यो यात्मा सैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा। तथापि भतमे दैह्यो यात्मा सैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमा। शब्दों का अर्थ, तथापि बत मे दैह्यो, तथापि यानी यद्यपि, बत दोष, मे मेरा, दैह्यो शरीर में स्थित ही अर्थात निश्चित ही, आत्मा चैवात्मना विभु, आत्मा मतलब जीव, च मतलब तथा, एव भी आत्मना अर्थात अपने से विभु पर्याप्त, असंपन्न इवाभाति, असंपन्न अर्थात विहीन, इवाभाति अर्थात प्रतीत होता है, ब्रह्म वर्चस्य यानी वेदांतियों का सत्तम यानी परम। अनुवाद, यद्यपि मैं वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है उससे पूर्णतः लेस हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, निस्संदेह श्रील वेदव्यास जी वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ अर्थात जड़ता में डूबे हुए जीवों की शुद्ध वेद वर्णित कृतियों से ही संभव है। शुद्धि वेद वर्णित कृतियों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे कितना भी पूर्ण क्यों न हो, दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि श्रील वेदव्यास ने संकेत खो दिया था, जिसके कारण वे असंतुष्ट थे। श्लोक नंबर 31, कृपया साथ साथ उच्चारण कीजिए। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिया। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियाः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिया। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिया। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिया। शब्दों का अर्थ किं वा अथवा भागवतम् यानी भागवत धर्म, यानी भागवता धर्म का मतलब होता है जीवों की भक्ति कार्य, नहीं प्रायेण प्रायः निरूपित अर्थात संकेत किया, प्रियाः परमहंसानां, प्रिया अर्थात प्रिय, परमहंसा अर्थात शुद्ध, जो सिद्धि पुरुष होते हैं ना सिद्ध, उनके लिए परमहंस उसको बोलते हैं। त एव हि अच्युत प्रिया, त एव यानी वे भी, ही यानी निश्चित ही, अच्युत यानी अचूक प्रियाः आकर्षक। अनुवाद, हो सकता है मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील वेदव्यास जी जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की असामान्य दशा में अनुभव किया जाता है, अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक ना तो भगवान और ना ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है। फिर से पढ़े, यह असंतोष भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा में अनुभव किया जा सकता है, किया गया था। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता, तब तक ना तो भगवान और ना ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार है। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्री प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवतम महापुराण की प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय का श्लोक, जिसका नाम है नारद जी का प्राकट्य, उसके अभी हम श्लोक नंबर 28, 29, 30 और 31 पढ़ा है। उसमें वेद व्यास जी की वो दशा, असंतुष्टि की दशा के विषय में बताया जा रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा कि वेद व्यास जी ने जन कल्याण के लिए बहुत बहुत कार्य किया, एक वेद को विभिन्न वेदों में विभाजित किया, पुराण लिखे, स्त्री शूद्र द्विज बंधु सबके कल्याण के लिए इतिहास लिखे, उतने सब वेदों को, इतने सारे शास्त्रों को संकलित करने के बाद आज वेद व्यास जी की मनोवृत्ति के विषय में बता रहे हैं। धृत वृत्तेन ही मया छंदांसी गुरवो मया, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने तो कितनी कठिन व्रत किया है, कितनी कठिन तपस्या के साथ मैंने ये सब कार्य किया है। और आगे लिखा गुरवो मया, यानी कि ऐसे भी नहीं कि मैंने अपनी मर्जी के अनुसार जो दिल में आया वो लिख लिया है, ये तो मैंने गुरु के आदेशों के अनुसार कार्य किया, शिष्य परंपरा में रहकर कार्य किया। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कठोर व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बगैर कोई भी वेदों का अर्थ नहीं समझ सकता। ये एक तरीका है कि आप यदि वेदों को समझना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी और गुरु आज्ञा यानी शिष्य परंपरा, कोई भी किसी से वेद नहीं पढ़ सकता। यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, देखो अभी वेद व्यास जी स्वयं भगवान साक्षात भगवान का शक्ति अवतार है, लेकिन वो बता रहे हैं गुरवोग ने, मैंने गुरु के आदेश अनुसार कार्य किया। गुरुजन के जिस तरह से गुरुजन यानी जैसे मेरे गुरु महाराज नारद मुनि ने मुझे बताया है, उसी के अनुसार मैंने बताया। तो वेदों के विभाजन किए मैंने, कोई अपनी संकल्पना नहीं लिखी है। तो आज यदि कोई भी खड़ा हो के वेदों के विषय में, आज पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बनारस में जाएं या फिर ऐसे जाते तो क्या होता है, त्रिवेदी होते हैं, चतुर्वेदी होते हैं, यानी त्रिवेदी हैं, उन्होंने क्या किया, तीन वेद को कंठस्थ किया। अभी वो तीन वेद के विषय में आपको बताया, आगे पीछे का कुछ पता नहीं, कौन से शिष्य परंपरा से आ रहे हैं और कौन से है ना मतलब संप्रदाय का कुछ नहीं खबर, बस मैं त्रिवेदी ब्राह्मण हूँ, मैं चतुर्वेदी ब्राह्मण हूँ, मैं हमारा कुल से हम ब्राह्मण है, किसी ऑथेंटिक परंपरा से, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों को नहीं समझ सकता। और ये कौन बता रहे हैं, साक्षात वेद व्यास जी कह रहे हैं, वृत्त वृत्ता ही मया छंदांसी गुरवोक मया। वास्तव में भक्तो शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र, जन्म जिसका भी होता है वो पैदाइशी कोई ब्राह्मण नहीं होता, ना ही कोई द्विज होता है। जन्मना जायते शूद्र, शुरू में सब शूद्र होते हैं, संस्कारात भवे द्विज, जब उसके संस्कार होते हैं। ये संस्कार जिसके विषय में हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे वो कब से स्टार्ट होते हैं, जब बच्चा गर्भ में नहीं आता है वहां से गर्भदान संस्कार शुरू होते हैं, फिर नामकरण संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार होते हैं, और हर एक वेदों में तो हर एक कदम का बच्चे ने उस तरफ पलटी किया, मतलब उस करवट बदला तो उसका एक संस्कार, उस तरफ करवट दिया तो उसका संस्कार, इतने संस्कार होते हैं। तो मतलब संस्कारात भवे द्विज, वास्तव में जब उसको जने यज्ञोपवित होता है तो वो द्विजो बनता है, यानी जब वो ब्राह्मण दीक्षा लेता है, जब गुरु महाराज उसको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, उसके बाद द्विज बनता है। और उसके बाद खाली दीक्षा ले जाना ले लेना काफी नहीं है, वेद पाठात भवेत विप्र, फिर उसके बाद उसको वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, और वेदों का अध्ययन करके भी उसको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि वेदों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, लेकिन करना क्या है, ब्रह्म जानान्ति इति ब्रह्म, जो ब्राह्मण किसको बोलते हैं, जो वेदों के वास्तविक मकसद को जाने, जो वेदों के वास्तविक लक्ष्य को जाने, वास्तव में भगवान बताते हैं चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 45 में भगवद्गीता में भगवान बताते हैं त्रय गुणीय विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन। अर्जुन, वेद ज्यादातर क्या बताते हैं? थ्री मोड्स ऑफ नेचर के बारे में बताते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों के विषय में, लेकिन आपको क्या करना है? निस्त्रय गुणियो भवार्जुन, उनसे आगे निकल। निस्त्रय गुणियों का मतलब ये नहीं है कि उन सब वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है उसको रिजेक्ट कर दो। इसका मतलब होता है कि इसके आगे भी कुछ है। वेद में जो लिखा हुआ है उन तीन गुणों के अंदर अटक के बैठ नहीं जाओ, आगे निकलो। उसमें क्या है? निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, आपको इस द्वैत भाव से ऊपर निकलना है और शुद्धित्व में, यानी शुद्ध जो अस्तित्व है उसमें स्थित होना है। सत्व स्थो, सत्व गुण, शुद्ध सत्व गुण है उसमें आपको स्थित होना है। युग निर्वे योग क्षेम आत्मवान, आपको जो ये योग और क्षेम है यानी लाभ और रक्षा की समस्त भावना से ऊपर उठकर आत्मा में स्थित होना है। क्योंकि जो जीव क्या सोचता है, अब वेदों में क्या योग और क्षेम के बारे में लिखा हुआ है कि आपको इस चीज की जरूरत है, आपको धन चाहिए तो इस तरह से करो, आपको अगर निरोग शरीर चाहिए तो इस तरह से करो। तो भले जो कुछ भी बता रहे हैं कि ये चाहिए तो ये करो, ये चाहिए, तो वो चाहिए किसको? क्या आत्मा को चाहिए? नहीं, भगवान कहते हैं निर्योग क्षेमम आत्मवान, आप ये जो भलाई लाभ और रक्षा की जो बातें हैं वो तो शरीर से रिलेटेड है, तुम्हें क्या करना है? आत्मवान, आत्मपरायण होना, यानी कि तुम अपनी रियलिटी को जानो कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा में स्थित हो जाओ और जो आत्मा का वास्तविक लाभ है उसके लिए कार्य करो और इन तीन गुणों से आगे निकलो। तो यहाँ पर वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने जो वेदों का संकलन किया है वो बिल्कुल सही तरीके से किया है, कोई छद्म यानी कि कोई धोखाबाजी नहीं की है, जो डिसाइपल सेक्शन है यानी कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मैंने कठिन व्रत का पालन किया है और गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार किया है और बहुत अच्छे तरीके से उसको है ना बताया है। कोई निर्व्यली के ना, इसका मतलब होता है कोई इसमें मैंने छद्म नहीं रखा है, कोई चीज छुपाई नहीं है, गृहीतम स्वीकार किया है, अनुशासनम यानी कि शिष्य परंपरा के अनुशासन के अनुसार मैंने किया है, जो कुछ भी है मैंने अनुशासन का भी पालन किया, मैंने कठोर व्रत का पालन किया, गुरुजनों के अनुसार उनके आदेशों अनुसार भी कार्य किया है। और अभी जो मैंने महाभारत की व्याख्या जो की है उसके द्वारा शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति दी है कि अब क्योंकि उनको वेद पढ़ने की परमिशन नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था कि स्त्री शूद्र बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, तो उसके द्वारा स्त्रियों और शूद्रों के लिए मैंने महाभारत की रचना की और एक उनको शिष्य गुरु शिष्य परंपरा की अभिव्यक्ति दी है। फिर शूद्र इन सब का कल्याण करने के लिए मैंने इस तरह से महाभारत की भी रचना की, तो इतना सब मैंने किया है। तो ये क्यों बता रहे हैं? जैसे हमने श्लोक नंबर 26 में पढ़ा, उन्होंने क्या बोला था? सर्वात्मकेनापि यदा नातु तुष्यद्रिदयम् तथा, कि मैंने सबकी भलाई के लिए किया, समग्र कल्याण कार्य में लगा था, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया उन्होंने? भारतव्य प्रदेशेना, तो यहाँ शिल प्रभुपाद जी कहते उन्होंने जो महाभारत की रचना की है, यहाँ पर शिल प्रभुपाद ने अंतिम लाइन में तात्पर्य में बताया है कि इस युग में ये जो कलयुग है मूल वेदों की उपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है, कि मूल वेद जो वास्तविक वेद है चार वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद उससे ज्यादा बेहतर क्या है? उससे ज्यादा तो महाभारत बेहतर है। क्यों? क्योंकि महाभारत में गोल जो है वो कृष्ण है, कृष्ण जो भी कर रहे हैं, जैसे पांडवों के ऊपर अगर कोई अनसम और विपत्ति आ रही है तो कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी महाभारत जो है उसमें पूरी बारीकियां हैं, वेदों के अंदर जो कुछ भी है, पॉलिटिक्स है उसके अंदर, प्रेम है महाभारत में, प्रेम है, वासना है, और हर चीज के बारे में बताया गया। और एंड क्या बताया महाभारत का, क्या है कि जहां कृष्ण होगा वहीं विजय होगी, जहां यत्र योगेश्वर, क्योंकि महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से जो वचन बोले हैं वो सारे के सारे महाभारत के अंदर। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं इस युग में तो वेद से ज्यादा, क्यों वेदों को क्यों इस तरह बोला, क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा कि वेदों के अंदर हर कुछ है, संसार का कोई भी ज्ञान कोई भी नॉलेज ऐसी नहीं है जो वेदों के अंदर हो, सब कुछ भी है, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्ट से कृष्ण को लक्षित नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखो जर्मनी में क्या है, वेदों का अध्ययन किया जा रहा है, वेदों का अध्ययन किया जा रहा है परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करने के लिए। तो उससे क्या है, जीव अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो भूल जाएगा, बल्कि इस भौतिक वर्ल्ड में ही बारम्बार आता जाता रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 2.46 में बहुत ही सुंदर बात बताई। भगवान कहते हैं यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानत। यावान अर्थ उदपाने, उदपाने कहते हैं एक जो छोटा सा कुआं होता है ना, उसके जितने भी प्रयोजन होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कुएं कभी गांव में होते हैं तो उनका अलग अलग प्रयोजन होता है, तो उनके द्वारा एक एक कार्य होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अगर जलाशय हो तो वो सारे कार्य उस जलाशय से हो सकते, फिर छोटे छोटे कुओं की आवश्यकता नहीं। तावान सर्वेषु वेदेषु, उसी प्रकार से अगर सारे वेदों का वास्तविक लक्ष्य किसी को पता चल जाए तो फिर वेदों के पूरे पूरे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, वास्तविक लक्ष्य यदि उसको पता चल जाए। तो वास्तविक लक्ष्य क्या है, भगवान बताते 15.15 में, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो। एव का मतलब होता है केवल मैं, सिर्फ और सिर्फ वेद्यो, यानी वेदों के द्वारा यदि कुछ जानना है तो मुझे जानो। इसके वेदों की जो अलंकारमयी लैंग्वेज है ना, जो फ्लावरी वर्ड्स हैं, उसके अंदर अटकने की, अटक कर बैठ जाने की जरूरत नहीं है, आगे निकलो। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, मुझे जानो वेद। वास्तव में भक्तों वेदों के द्वारा चार चीजें जानी जाती हैं, नहीं तीन चीजें जानी जाती हैं। तीन चीजें कौन सी हैं, एक तो संबंध है, दूसरा प्रयोजन है, और तीसरा एक संबंध है, दूसरा अभिधेय है, और तीसरा प्रयोजन। ये तीन चीजें हैं। देखो पहले तो संबंध जानते हैं, संबंध क्या है, पहला मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, और मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता क्या बताती है, मैं कौन हूं, दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि मनुष्य ये जी आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। कृष्ण कौन है, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका प्रभु हूँ, ठीक है। और मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। भगवान क्या है, सबका प्रभु है। और हमारा संबंध क्या है, भगवान कहते हैं ममैव अंश जीवलोके, इस संसार में जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं। तो पहला वेदों का क्या है अभिप्राय, संबंध ज्ञान। उसके बाद अभिदेह, अभिदेह किसको बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विद वी अप्लाई द नॉलेज एंड देन रियलाइज, एक प्रोसेस जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं और फिर हम उसको महसूस करते हैं। यानी कि प्रोसेस क्या है, शास्त्र अध्ययन करना, गुरु साधु और शास्त्र, उनके आदेशों का पालन करके हम रियलाइज करें। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कैसे करना है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति सत्यम ते प्रति जाने प्रिय, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझे प्राप्त करोगे। और उसके बाद है प्रयोजन, प्रयोजन का क्या मतलब होता है, परम सिद्धि। परम सिद्धि क्या है, कृष्ण प्रेम। तो भगवान भगवद गीता में क्या बताते हैं, सर्व धर्मान परित्यजे माम एकम शरण व्रज अहम तो हम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मासच। सब कुछ छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये सब यदि वेदों से हमें नहीं समझ में आता, इसीलिए देखो श्री प्रभुपाद ने क्या कहा कि इससे बेहतर है कि भागवतम सॉरी ये महाभारत पढ़ी जाए, क्योंकि गीता है उसके अंदर और गीता के अंदर वेदों का सार है, सार। तो गीता के एक एक श्लोक से हमें ये सारी चीजें संबंध ज्ञान अभिदेह और प्रयोजन पता चलते हैं। तो इससे बेहतर है कि वेदों के अंदर उलझने से बेहतर, क्योंकि वेदों के अंदर इतनी फ्लावरी वर्ड्स हैं कि हम डायरेक्ट से भगवान तक पहुंचने ही नहीं देंगे, देह में ही अटक के रह जाएंगे। इसलिए बोला कि अभी वेद व्यास जी को ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना अच्छे तरीके से किया और है ना ये भी लिखे, उसके बाद दूसरे श्लोक में बोला, आगे श्लोक में वेद व्यास जी बोलते हैं तथापि मत में द्याय हो आत्मा चाहे आत्मा ना विभु, कि जितना कुछ वेदों के लिए आवश्यक है, जितना जितनी बातें जानना जरूरी है वो सब मुझे खबर है, वेदों को मैंने लिखा है, वेदों को मैंने संकलन किया है और वेदों के अंदर जो कुछ है वो मुझे सब कुछ पता है, तो फिर भी क्या असंपन्न इवा भाति, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे अपूर्णता का अनुभव क्यों हो रहा है। यहाँ पर वेद व्यास जी बता रहे हैं कि चाहे आपको कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, अभी भौतिक ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, शून्य है। यहाँ पर क्या होता है, किसी को थोड़ी सी भी नॉलेज पता हो जाती है, कोई चार्टर अकाउंटेंट बन जाता है, कोई कोई बन जाता है, कुछ भी डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, वकील बन जाता है, तो सोचता है कि मेरे से बेहतर तो कोई नहीं है, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मुझे इतना सारा ज्ञान है, तो है ना मैं ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी बता रहे हैं असंपन्न इवा भात, कि मुझे इतना सब कुछ पता है, जो कुछ वेद, वास्तव में कोई ज्ञान वेदों के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर तरह का विज्ञान है, ज्ञान है, सब कुछ है। और वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने वेदों का रचयिता हूँ, मैंने वेदों को रचा है और वेदों को के लिए जितनी बातें जानना आवश्यक है मुझे वो सब पता है, फिर भी असंपन्न, मुझे क्यों अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। इसके अनुवाद में और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि जीव जब इस संसार में आता है तो वो पदार्थ के अंदर डूब जाता है ना। श्री वेद व्यास वैदिक उपलब्धियों से बिल्कुल पूर्ण थे, लेकिन वो तो पूर्ण थे, लेकिन जीव जब सामान्य जीव संसार में आता है तो वो भौतिक चीजों के अंदर डूब जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये प्राप्त करूं वो प्राप्त करूं, लेकिन उसकी शुद्धि जो है वो वेद वर्णित कृतियों से ही संभव है। वेद से क्या होगा, वेद को अध्ययन करके यदि जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति भी करेगा तो उसके अनुसार करेगा तो उसकी शुद्धि होती रहेगी। लेकिन शुद्ध होना चरम लक्ष्य नहीं है, चरम उपलब्धि नहीं है। चरम उपलब्धि तो क्या है, क्या है प्रयोजन, क्या प्राप्त करना है, संसार में आए क्यों क्यों है, कौन है, किसके अंश है, किसको संपन्न, किसको प्रसन्न करके हम प्रसन्न होंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है, इसे प्राप्त किए बिना जीव चाहे कितना भी पूर्ण क्यों न हो दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे भौतिक भौतिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने ही पूर्ण हो, पूर्ण का मतलब शक्तिमान हो जाओ, आप कितने भी धनवान हो जाओ, कितने ही ज्ञानवान हो जाओ, भौतिक दृष्टि से खाली मृत्यु सर्व हरश्चाम, अगले ही क्षण में आपको मृत्यु आ जाएगी और जितना कुछ कमाया इतना सारा धन, इतना सारा वैभव, इतना सारा ज्ञान, सब कुछ क्षण में नष्ट हो जाएगा। तो वो कौन सी वस्तु है जो प्राप्त करूं और कभी नष्ट ना हो। भगवान कहते हैं 2.40 में, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भव, कि ये जो भाव धर्म का जो पथ है, भगवत प्रेम का जो पथ है, उसके अंदर किया हुआ एक छोटा सा कार्य भी कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन यदि आप भौतिक धरातल पर कितने ही बड़े कार्य कर लो आप कभी भी खुद को संतुष्ट नहीं। तो यही बताना चाह रहे हैं अद्वैत वासी कि मैंने कितना सब कुछ किया लेकिन कृष्ण से प्रेम का वो प्रेम को कृष्ण को लोगों को नहीं दिया तो फिर मैं असंपन्न महसूस कर रहा हूँ, असंतुष्ट महसूस कर रहा हूँ, ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ किया ही नहीं। वास्तव में भक्तों, ये असंतुष्टि जो है वो सबसे बड़ी धरोहर है, चाहे भौतिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो। अगर हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी ना, भौतिक कार्यों से संतुष्टि प्राप्ति हो जाएगी, तो हम कभी भी आध्यात्मिक के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। और आध्यात्मिक कार्यों में यदि संतुष्टि प्राप्त हो गई तो कभी भी हम उस प्रेम का, उस विरह का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसी तरह से इस संसार में नहीं, गोलोक वृंदावन धाम में भी संपूर्ण गोपियां जो भगवान के साथ रहती, श्रीमती राधा रानी की जो चरम सखियां, अष्ट सखियां हैं, जैसे ललिता, विशाखा, इंदुलता, रंग देवी, तुंग देवी, ये सब सदैव असंतुष्ट रहती हैं कि क्यों अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी सेवा नहीं कर पा रही हूँ मैं भगवान की, कृष्ण की। कुछ अपने ना और भी गाइडेंस करेंगी, ललिता से पूछेंगी मैं कैसे कृष्ण को खुश करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं कर पा रही हूँ। और जो मंजरियाँ हैं वो भगवान की, ये जो श्रीमती राधा रानी की सखियों से इंस्ट्रक्शन लेंगे कि हमें बताओ कि कैसे संतुष्ट करें। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक आप असंतुष्ट नहीं होते हो तब तक आप आगे नहीं कर सकोगे, उससे ज्यादा और सेवा करनी, और सेवा करनी है। तो ये बहुत उपलब्धि है आध्यात्मिक में कि हमें हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए अपनी सेवा से, कि मैं उतना कर नहीं पाया जितना कि मुझे करना था, जितना संतुष्ट मुझे भगवान को करना था अपनी सेवा से उतना कर नहीं पाया। तो श्री वेद व्यास जी की ये इच्छा है कि मैं और कुछ ऐसा करूं जिससे मैं किसको प्रसन्न करूं। आगे बता रहे हैं कि वा भागवताम धर्मा ना प्रायेण निरूपतः। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भागवतम यानी भगवान की भक्ति का, किम वा भागवता धर्म यानी भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया। यानी कि उसके वेद के अंदर है तो सही, लेकिन उसमें क्या है, केतव धर्म है, वो तो मिक्स होके गया। अभी विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है, क्यों? और आगे बोलते हैं प्रियाः परमहंसानाम, ऐसा जो डायरेक्ट से भगवान के साथ संबंध जोड़ के भगवान के प्रेम की जो लीलाएं हैं, वही तो परमहंसो त एव अच्युत प्रिया, जो अच्युत भगवान है और जो भगवान के परमहंस भक्त हैं, उनको तो यही लीलाओं में आनंद आता है। वास्तव में भक्तों, परमहंस की अत्यंत ही सुंदर व्याख्या करते हैं श्री प्रभुपाद जी। कहते हैं वो हंस पक्षी होता है ना, जो वो क्या करता है, हंस पक्षी उसको अगर दूध के अंदर पानी मिलाकर देते हैं ना, मतलब एक बड़ा सा ग्लास हो या जग हो, उसके अंदर दूध डालेंगे आधा और आधा पानी डालेंगे, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा दूध ले जाएगा और फिर पानी उसी में छोड़ के चला जाएगा। तो क्योंकि जो परम हंस होते हैं उनकी, उनको ये अलंकारमयी वेदों की इतनी बड़ी व्याख्या क्या लेना देना, जब इटर्नल मकसद जो वेदों का लक्ष्य है, क्या वेदों का लक्ष्य है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को जानना यदि वेदों का लक्ष्य है और भगवान से प्रेम करना वेदों का लक्ष्य है, तो ये प्रेम तो मैंने लगता है, वो कहते हो सकता है मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया हो जो सिद्ध जीवों और अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। तो वास्तविक जो लक्ष्य है वो मैंने खुल कर नहीं दिया। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक सामान्य दशा में स्थित नहीं हो जाते, सामान्य दशा क्या है कि मैं तुम्हारा दास हूँ कृष्ण, मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम मेरे पूर्ण हो, मुझे तुम्हें प्रसन्न करना है, इसके अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। जब तक इस स्थिति में नहीं पहुंच जाता है तब तक ना भगवान प्रसन्न होते हैं और ना ही जीव स्वयं प्रसन्न होता है। तो उन्होंने क्योंकि ये बात को इतना क्लियर नहीं बताया है वहां पर, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने विशेष रूप से ये बात नहीं बताई है कि भगवान के विषय में, भगवान की भक्ति के विषय में इतना अच्छे तरीके से नहीं बताया है, तो भगवान के जो परम भक्त होते हैं और भगवान होते हैं उनको तो वही चीजें अच्छी लगती। तो जब तक मैं भगवान को और भगवान के भक्तों को प्रसन्न नहीं कर सका, तो फिर इसीलिए मुझे असंतुष्टि का अभाव, मतलब संतुष्टि का अभाव हो रहा है। मुझे ऐसा अभाव मतलब रियलाइज हो रहा है कि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तो वास्तव में भक्तों, वेदव्यास जी बताना चाह रहे हैं कि जब तक हम जीव अपने रियल गोल कृष्ण भक्ति को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कराता है और उसके विषय में जब तक बात नहीं करता है कृष्ण के विषय में, तब तक भक्त को कभी चैन नहीं आता। तो वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे हैं, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख लिए हैं, लेकिन अभी तक उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि वो पका हुआ फल जो है वो अभी तक उन्होंने नहीं खिलाया किसी को। इसीलिए अब उनके गुरु महाराज कल नारद जी पधारेंगे, देखते हैं वेद व्यास जी उनका कैसे स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण को एग्जिट पढ़ रहे हैं। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा अच्छे तरीके से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।